सात दिन के बाद में सर्प पक्षी तक्षक का दंश होकर उसका मृत्यु होने वाला था। और तब परीक्षित महाराज ने सब राज त्याग कर दिया और संन्यस्त विरक्त होकर वो गंगा किनारे आ गए और वहाँ से सुखदेव जी आए और सुखदेव जी ने भागवत का पाठ आरंभ किया। और जब श्री कृष्ण का चरित्र का वर्णन आरंभ हुआ तो कौन सा दिन होगा वो सात दिन में, शायद छठवां दिन होगा। और पांच दिन और पांच रात लगातार बिना भोजन के ब्रेक, बिना निद्रा के ब्रेक, हाँ बिना कोई नैसर्गिक विधि का ब्रेक, कुछ भी कोई भी ब्रेक न लेते हुए सुखदेव जी बोलते जा रहे हैं और परीक्षित महाराज जी सुनते जा रहे हैं। और बड़ी अद्भुत बात यह है कि वही परीक्षित जब जंगल में शिकार में गए थे तो अपनी प्यास से वो इतने व्याकुल हो गए कि अपने आप को काबू में रख नहीं पाए, ऋषि के गले में सांप डाल दिया अपमान के स्वरूप में, इतने बेकाबू हो गए थे वो। और वही परीक्षित जी महाराज बैठे हुए हैं एक ही आसन पर, ना कोई चाय मांगी है, ना कोई खाना मांगा है, ना कोई ब्रेकफास्ट मांगा है, कोई फलाहार, कोई फल का रस, कोई बीच में दो घंटे की निद्रा, कुछ नहीं। और सुखदेव जी आप भागवत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बार बार बीच बीच में कुछ कुछ अंतर, कुछ अध्याय के बाद में परीक्षित महाराज का गौरव कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप अभी भी जिज्ञासा कर रहे हो। हाँ ऐसा नहीं महाराज जी पाँच दिन बीत चुके हैं अभी क्या प्रश्न करूँ आपको, ना शक्ति है, ना ग्लूकोज है, ना एनर्जी है, अभी दो दिन बचे हैं कैसे भी गुजार लूंगा दो दिन, आप बोलते रहो जैसा आपको शक्ति है बोलते रहो, मुझे कोई अभी शक्ति नहीं है प्रश्न पूछने के लिए। स्थिति एकदम विरुद्ध थी, जैसे ही भागवत जी की चर्चा आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे सुखदेव जी का उत्साह इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि परीक्षित महाराज का उत्साह प्रश्न पूछने में इतना बढ़ रहा था कि उनके प्रश्न पूछने का उत्साह देखकर सुखदेव जी उनका अभिनंदन करते हैं। श्रोता हो तो ऐसा होना चाहिए, ना भूख ना प्यास ना निद्रा, कोई भी वेग उसको आवृत्त नहीं कर रहा है। और दशम स्कंद तब चल रहा है एंड में एकदम, उसके बाद केवल दो स्कंद बचे हैं और पूरी 79 अध्याय है भगवान के चरित्र के बारे में। और पूरा भागवत जी जो कहा गया 12 स्कंद में, ये दशम स्कंद जो है सबसे महत्वपूर्ण है, इसी के लिए तो पूरा भागवत लिखा गया था, उसकी भूमिका बनाने के लिए 9 स्कंद लिखे गए थे। व्यास देव जी को यही समझाया था नारद मुनि ने, श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन करो जो सर्व मंगलकारी है। आपने इतने सारे अनंत शास्त्र लिखे लेकिन श्री कृष्ण भगवान के दिव्य चरित्र का वर्णन किए बिना आपका लेखन जो है वो अधूरा है, इसीलिए आपको समाधान प्राप्त नहीं हो रहा है। तो फिर व्यास देव जी गए हैं दोबारा गुफा में और उन्होंने श्रीमद् भागवत का लेखन किया है और उसमें प्रधान जो वर्णन था वो श्री कृष्ण भगवान के चरित्र का था और वो ही आ रहा है छठे दिन में, फर्स्ट दिन में नहीं आ रहा है। तो हमें उम्मीद है कि वो थके होंगे लेकिन उम्मीद के उल्टा हो रहा है कि छठे दिन में उनका उत्साह जो है पहले दिन से कई गुना ज़्यादा है। आखिर तक सचेतन थे वो, उनकी आत्मा पूर्णता चेतन थी, किसी प्रकार के भौतिक वेग का उन पर प्रभाव नहीं था और उत्साह जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था क्योंकि वो आत्मा के स्तर पर श्री कृष्ण के चरित्र का आनंद ले रहे थे। हम भी हमारे जन्माष्टमी के उपवास के आखिरी पर्व में हैं और भगवान कृष्ण के चरित्र का अमृत पान करने से हम भी हमारी प्यास भूख और निद्रा सब भूल जाएंगे अगर उसमें आप हमारा हृदय लगाएंगे। श्रवण श्रृणवताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य कीर्तन श्रवणा, पुण्य कीर्तन क्या, पुण्य श्रवण कीर्तन, यह ऐसी एक धारा है श्रवण की कि जो श्रवण साधना करता है भगवान के चरित्र का उसके हृदय में जितना भी अभद्र है सब नष्ट हो जाता है। हृदयंतस्थ अभद्राणी विदुनोति सुरुत्सताम, जो हृदय में जो भी अभद्र है, जो अपवित्र है, जो क्लेश वाला है, जो तकलीफ वाला है, जो बंधन कारक है, दुख कारक है, वो सब कुछ नष्ट हो जाता है श्री कृष्ण के चरित्र का पान करने से। और इसलिए सुखदेव जी बड़े दयालु हैं, वो पूरे विश्व पर ये कृपा कर रहे हैं। सुखदेव जी परीक्षित के नाम से हम सब जन सामान्य पर विश्वास ये कृपा कर रहे हैं, करुणा कर रहे हैं। और उसमें भी सबसे आनंददायी परी जो प्रसंग है वो श्री कृष्ण के जन्म का है। हाँ, कोई बजाएगा थोड़ा दो मिनट के लिए? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, बजाओ बजाओ। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़े पाल की, जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो इस तरह से नंद भवन में आनंद की वर्षा हो रही है। सुबह की कथा हमने जहां विश्राम किया था वो प्रसंग में सभी गोपियां और सभी ग्वाल बाल एक दूसरे पर मक्खन, घी, दूध, दही, हल्दी, अनेक प्रकार के रंग इसका वर्षाव कर रहे हैं। हाँ, पहले स्त्रियों ने वर्षाव किया कृष्ण भगवान के ऊपर, और जो बचा हुआ था वो गोपों के ऊपर वर्षाव किया। जब गोपियों का ऐसे भाव में गोपों ने देखा तो सब ग्वाल बालों ने अपने हाथों से घी मक्खन सब वर्षाव शुरू किया। और नंद बाबा, रोहिणी और यशोदा सब देख रहे हैं कि पूरा नंद गांव के वासी जो है भाव विभोर हो रहे हैं। क्यों भाव विभोर हो रहे हैं? क्योंकि हमारे घर में कन्हैया का जन्म हुआ है। इनका उत्साह देखकर फिर नंद बाबा ने क्या किया, सभी ब्राह्मणों को बहुत लिबरली यानी बहुत ही खुले दिल से, खुले हाथ से दान दिया। क्या क्या दिया? वस्त्र दिए, हाँ, अलंकार दिए, सोना दिया, चांदी दिया, हीरे मोती का अलंकार दिया, वस्त्र दिए और भोजन खिलाया, सबको गाय का दान भी किया। कितनी गाय दान की इसका कोई हिसाब नहीं था। जितने आए उनको गाय मिलती गई। वो गाय भी कैसी थी? उनके सिंगों पर सोने की कैप थी, हाँ, शरीर पर सिल्क का बॉर्डर का शॉल रखा था, पैरों में घुंघरू थे, गले में सोने की जंजीर और सोने की घंटा थी, फूलों की मालाएं थी, मोर पंखों की मालाएं थी, पूंछ पर मोर पंख का एक्सटेंशन बनाया था। हाँ, आप सोच सकते हैं कितने प्रेम से उन्होंने ऐसे गाय ने दिया, चुन चुन के स्पेशल बड़े प्रेम से ब्राह्मणों को दिया, सबको संतुष्ट किया। अलग अलग प्रकार के गायक वहां पर आए हुए थे, कोई इतिहास गा रहा था, कोई वर्तमान परिवार का गौरव गा रहा था, कोई प्रसंग अनुरूप गीत गा रहा था, जन्मदिन का मौसम है, बधाई गा रहे हैं, बाजे बधाई नंद भवन में, सब बधाइयां गा रहे हैं, सब दूसरे को गले लगा रहे हैं, बधाई दे रहे हैं सबको। अरे बहुत दिनों बाद नंद बाबा के यहाँ पर पुत्र प्राप्ति हुई है, लाला का जन्म हुआ है। इतना प्रेम था ब्रजवासियों के मन में। नंद बाबा को और यशोदा माई को बड़े बूढ़ी उम्र में, नंद बाबा 85 साल के थे, उसी के आसपास 80 साल की यशोदा माई थी, संतान नहीं थी उनको। इतने बरसों बाद संतान प्राप्त हुई ये सुनकर सारे गोकुलवासी सज धज कर वहां पहुंचे, फूलों की माला पहनकर, सोने के हीरों के अलंकार पहनकर, अत्र लगाकर, कुमकुम लगाकर, अगोरू चंदन लगाकर, सभी स्त्रियां पुरुष सब निकले, सिल्क के वस्त्र पहनकर, रेशम के वस्त्र पहनकर, स्वीट मीट्स मतलब मिठाइयां लेकर, भेंट वस्तु लेकर सब भाग रहे हैं। और जो स्त्रियां भाग रही हैं तो बड़े बड़े शरीर की स्त्रियां हैं, वो मध्यम उम्र की है, मिडिल एजेड, तो जब भाग रहे हैं तो उनका जोर से भागने को नहीं हो रहा है। सारे फूल जो है जो बालों पे पहने हुए हैं, गले में पहने हुए हैं, सब टूट टूट कर गिर रहे, मानो आकाश से पुष्प वृष्टि होती हो। इस तरह से नंदगांव के सारे सड़कों पर फूल ही फूल थे, गेंदे के फूल नहीं थे, बिना खुशबू वाले, हाँ, मालती और अलग अलग प्रकार के सुगंधित फूल, इनकी खुशबू जो है पूरे वातावरण में भरी हुई थी। क्योंकि वैसे ही सारे फूलों पर बहार आई थी, सब पेड़ और पौधे और बेलियां सुगंधित फूलों से व्याप्त हो चुकी थी, सब आसमंत में नदियों से निकलने वाली वर्षा के साथ साथ होने वाली वायु जो है वो सब खुशबू लेकर, बाष्प लेकर सभी लोगों के त्वचा को आनंद प्राप्त करा रही थी। ऐसा सुंदर माहौल था वहां पर। तो सभी गोपियों ने अभिषेक करने के बाद में श्री कृष्ण को, बाल कृष्ण को वरदान दिया कि आप लंबी आयु जियो और हम सब की रक्षा करो, हम सब की रक्षा करने के लिए आप लंबी लंबी आयु जियो। सबने आशीर्वाद दिया और सब लोगों को उनके उनके उम्र के अनुसार भेंट दिया गया। नंद के घर में इतना आनंद हुआ, बहुत बहुत आनंद हुआ। ऋषि मुनि सब लोग आए और खास करके देवता लोग आए, लेकिन देवता बनकर नहीं आए, ब्राह्मण और ब्राह्मणी बनकर आए। कुछ लोग चूड़ियां बेचने वाले बनकर आए, कुछ लोग फूल बेचने वाले बनकर आए, कुछ धाड़ीन मालिन ऐसे कहते हैं उसको ब्रज भाषा में, अलग अलग भेष धारण करके नम्र अवस्था में सब लोग लाला के दर्शन करने आए, क्योंकि सब लोग लालायित है, क्योंकि गौलोक वृंदावन में भगवान का बाल रूप का दर्शन नहीं होता। इस मामले में गौलोक वृंदावन से भी भौम वृंदावन बहुत महत्वपूर्ण है। जो वृंदावन पृथ्वी पर प्रकट हो गया है वो अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर लाला का बाल रूप का दर्शन होता है, नन्हे नन्हे कदमों का दर्शन होता है, तोतले तोतले बोल सुनाए पड़ते हैं, हाँ हाथ पकड़कर चलना सीखते हैं, जो पूरी दुनिया चलाते हैं वो यहाँ मैया के हाथ पकड़कर चलना सीखते हैं, जो सब वेदों का निर्माण करते हैं वो तोतले तोतले बोल बोलकर माँ उनको सिखाती है भाषा कैसे बोलनी है। ऐसा अनोखा दृश्य जो है वो केवल ब्रजभूमि पृथ्वी पर उपलब्ध है। इसलिए कैलाश से शिवजी महाराज भी आते हैं साधु बनकर दर्शन प्राप्त करने के लिए, और उनको भगाया जाता है कि आप कंस के आदमी हो, अब तक तो घोड़ा गधा बैल और स्त्री और बगुला और क्या क्या बनकर आ रहे थे, अभी ऋषि बनकर आए हो, तुम सब कंस के चेले हो चले जाओ यहाँ से, चाहिए तो ये मोती ले लो, चावल ले लो, धान ले लो, नहीं चाहिए तो चले जाओ, लेकिन लाला के दर्शन नहीं होंगे। तो शिवजी महाराज भी बेचारे कैलाश से आए हैं वेश बदलकर, तपस्या करते हैं आशेश्वर महावन में, आशेश्वर वन में रो रो कर तपस्या करते हैं कि लाला के दर्शन हो जाए। फिर पूर्णमासी जो उनकी पत्नी है पार्वती देवी, पूर्णमासी का अवतार लेकर वहां पर लीला कर रही है, यशोदा माई को बताती है लाला अभी रोने लगा है, हाँ रो रहा है, अभी रोना रुकता नहीं है, अभी ना खिलौना चाहिए उसको, ना घुंघरू चाहिए, ना दूध चाहिए, ना मक्खन चाहिए, संदेश चाहिए, कुछ नहीं, सब ठुकरा रहा है, रोते ही जा रहा है, रोते जा रहा है, अभी तो इसका रोना बहुत पैथोलॉजिकल हो गया है तो क्यों ना उसी स्वामी को, महाराज को, ऋषि को बुलाया जाए। तो जिस ऋषि को बुरे शब्द बोलकर, कठोर वचन बोलकर भगाया गया था, उसी ऋषि को आरतियां लेकर, फूल मालाएं लेकर फिर निमंत्रण दिया गया। कैसा मन है यशोदा का देखो आप, यशोदा माई जो है उनका मन कैसा है देखो। कृष्ण के लिए किसी को ठुकरा सकती है, कृष्ण के लिए किसी को गले लगा सकती है, क्योंकि केंद्र स्थान में कृष्ण है, केवल उनका आनंद है, उनकी सुरक्षा है, उनका प्रेम है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। उसी को बुलाया जा रहा है आरती और मालाएं लेकर। फिर बड़े इत्मीनान से शिवजी महाराज आते हैं ऋषि बनकर, और फिर उनको बड़े सम्मान के साथ में लाला को अंतपुर से बाहर लाया जाता है और उनके चरणों का शिवजी महाराज दर्शन करते हैं। तब जाकर तुरंत लाला रोना बंद करते हैं। बाद में यशोदा माई कहती है कि महाराज जी अभी आप यहीं रहना, जब जब मेरो लाला रोए तब तब आना अभी कहीं दूर मत जाना, यहीं रहना, जब जब रोएगा तब दोबारा आपको बुला लेंगे। ऐसा प्रेम है देखो मैया का, हाँ ऐसा अनोखा वातावरण है यहाँ पर। तो एनीवेज, जैसे ही ये नंद उत्सव समाप्त होता है, नंद उत्सव समाप्त होते ही नंद महाराज जो है बड़े बड़े जिम्मेदार गोपों को बुलाते हैं और कहते हैं कुछ दिन के लिए मैं मथुरा जाऊंगा टैक्स चुकाने के लिए कंस का, अब वृंदावन की आप देखभाल करना। और वो मथुरा पहुंच जाते हैं अपना वार्षिक कर भरने के लिए कंस के लिए। तो नंद महाराज जब पहुंचते हैं तो वसुदेव जी भाग भाग कर उनको मिलने जाते हैं, क्योंकि उनको पता है सारा रहस्य, नंद बाबा को पता नहीं रहस्य क्या है। उन्हीं के घर बालक पैदा हुआ था, उसी को रात को टोकरी में लेकर वो गए थे जमुना जी पार करते हुए, वो कन्या को लेकर आए थे, उनको पता ही नहीं कन्या हुई थी कि पुत्र हुआ था, उनको लग रहा है पुत्र ही हुआ था, लेकिन मैं जानता हूँ कि पुत्र मेरा है, मैंने वहाँ पर रख के आया था मैं। और उनको ये भी पता है कि जैसे ही रात को कंस ने पछतावा किया और सवेरे जाकर सभा में बैठा तो सबने उसको सलाह दिया, क्यों चिंता करते हो, आपकी तलवार के वैसे देवता लोग डरते हैं, हाँ बार बार अपना फेटा छोड़कर अपने बालों को लंबा करके आपके शरण में आए, वो विष्णुदेव सबके हृदय में परमात्मा बनकर छुपे हुए हैं, वो बाहर नहीं निकल सकते। शिवजी महाराज विरक्त होकर जंगल में प्रवेश किया उन्होंने, और ब्रह्मा जी हमेशा तपस्या में बैठे रहते हैं, श्लोकों का पठन करते रहते हैं, इनका कोई वाली नहीं है। ये देवता अगर आए भी होंगे जन्म लेकर नंदबाव नंदगांव में, बरसाने में, गोकुल में, मथुरा में, क्या फर्क पड़ता है, आपके तलवार के चमक के सामने, धनुष की तनत्कार के सामने किसी की हिम्मत नहीं है, इसलिए आप डरो मत। 10 दिन के अंदर अंदर जितने बालकों का जन्म हुआ है सब बालकों का वध किया जाए, पुतना को बुलाओ, पुतना खेचरी है, खेचरी यानी किसी भी तिनको को अभिमंत्रित करके वो उसमें बैठकर हवा में उड़ सकती है, उसको बच्चे का खून पीने में बहुत रुचि है, तो उसी के स्तन में कालकूट विष भरा जाए और सुंदर रूप धारण करके वो गोकुल में प्रवेश करें, और 10 दिन के अंदर जो बालक जन्म हुए सबको स्तनपान कराएं, आपका काल भी उसके अंदर मर जाएगा, कि वो भी अभी अभी जन्म हुआ है उसका 8वें पुत्र के रूप में। तो ये वसुदेव को पता था कि यहाँ से क्या फरमान निकल रहा है, यहाँ से क्या योजनाएं बन रही है। जैसे ही नंद महाराज पहुंचे वसुदेव भाग के गए, लेकिन खुले खुले उनको बोल नहीं पाए कि मेरा बालक तुम्हारे पास है, ऐसे ऐसे होने वाला है, देखभाल करना। लेकिन वो बार बार पूछ रहे थे, आपको तो बहुत दूर से संतान नहीं हुई थी, हाँ बहुत देर से संतान नहीं हुई आपको, बहुत दिनों बाद संतान हुई है, आप बड़े भाग्यवान हो, मेरा बालक तो आपके पास है ही, मेरी धरोहर तो आपके पास है, अभी आपको और एक पुत्र प्राप्त हो गया है और मुझे उम्मीद है कि आप उनकी देखभाल बड़ी प्रेम से करते होंगे, आपके जानवर कैसे हैं, आपके लोग कैसे हैं, ब्रज में लोग कैसे निवास कर रहे हैं, सब आनंदित तो होंगे ही, हाँ इस तरह से वो चर्चा कर रहे हैं। उसके मन में जो चिंता है ना वो अलग अलग प्रकार से व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हूँ। वो कहते हैं वो खुद अपने बालक का जन्म जो है वो मना नहीं पाए ना, इसलिए नंद महाराज को गले लगाया उन्होंने, क्योंकि नंद महाराज को भाग्य मिला उनके बालक का जन्मोत्सव मनाने का। वसुदेव कहते हैं कि आपको पुत्र प्राप्त हुआ है, मैं तो जेल में था कुछ नहीं कर पाया, हम सब लोग साथ में आते थे, लेकिन समय और काल और कर्म ऐसे होते हैं कि कुछ समय के लोग साथ में आते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं। इस प्रकार से वसुदेव अपने हृदय की जो चिंता है वो व्यक्त कर रहे हैं। कंस ने नवजात बालकों का वध करने का निर्णय ले लिया था, तो वसुदेव कहते हैं देखभाल करना, शायद अभी आगे जाकर गोकुल में कोई आतंक होने वाला है, बी केयरफुल। और आकर अगर सब काम हो गया है टैक्स वैक्स भरने का तो तुरंत निकल जाओ आप। वसुदेव कहते हैं कि मैं मेरे 8 बालकों को एक को भी संभाल नहीं पाया, और चूंकि मैं अपने कर्तव्य को नहीं कर पाया, मेरा चारों पुरुषार्थ व्यर्थ हो गए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष सारे व्यर्थ हो गए, लेकिन आप बड़े भाग्यवान हो, आपके पास पुत्र हैं, आप उनकी देखभाल अच्छी तरह करना। ओ नंदा प्लीज लीव क्विकली एज देर मे बी सम डिस्टर्बेंस इन गोकुल, ऐसे कहकर तुरंत नंद बाबा निकल जाते हैं। यहां पर जब वहां से निकल जाते हैं उस समय तो पैदल जाते थे या बैलगाड़ी बैठ के जाते थे, इतना जल्दी पहुंचते नहीं थे। उसी बीच में पुतना जो है वो तिनके को अभिमंत्रित करके हवाई जहाज बनाकर वहां से उड़ के आती है, आते ही तुरंत अपना भेष बदलती है, बहुत सुंदर लक्ष्मी जैसा सुंदर रूप धारण करती है, इतना सुंदर वस्त्र पहनती है, अलंकार पहनती है, इतनी मधुर मोहक बातें करती है, इतनी मीठी मीठी आवाज में, और सब जगह जाकर घर घर में जाकर सब बच्चों को स्तन में लगाती है, सब बच्चों को, आपके घर आई आपको लगे वाह इतनी बड़ी लक्ष्मी समान देवता घर में आई है, भगवान की कृपा है, उसको दे देते हैं, वो पीछे जाकर उनको दूध पिलाते हैं, सब बच्चों को मारकर आगे चले जाते हैं, सब नवजात बालक मर जाते हैं, और आखिर में वो नंद बाबा के आंगन में आती हैं। रोहिणी, यशोदा, प्रभावती, हाँ पीवरी, सभी गोपियाँ आके मिलती है, देखती है, अरे क्या भाग्य हमारा, साक्षात विष्णु भगवान ने लक्ष्मी को भेजा है हमारे लिए, हमारे बालक पर कृपा करने के लिए। तो वो बालक को चाहती है कि मुझे पास, तुरंत उसके पास में पूरे विश्वास के साथ दे देते हैं। और बड़े आतुर है वो कि यही वो बालक है जो ब्रज में बहुत फेमस है, इसका जन्मोत्सव में पूरा नंदगांव, पूरा गोकुल पहुंच गया था, शायद यही होगा वो आठवां बालक वसुदेव का। तुरंत उसको अपने स्तन पे लगाती है, उसके मुंह में लगा देती है, और बालक भी जो है वो आंखें बंद कर लेता है। जैसे वो आती है तो ऐसा कहा गया है कि वो आंखें बंद कर लेता है बालक। आचार्य बताते हैं कि सबसे पहला राक्षस या राक्षसी कौन था, पुतना, एक कन्या, एक माता थी, वो स्त्री थी। तो भगवान ने आंखें बंद कर सोच के, अरे पहला राक्षस मारना पड़ रहा है तो भी स्त्री को मारना पड़ रहा है, तो आंख बंद कर लिया, क्योंकि स्त्री को मारना अपराध माना गया है। दूसरा कारण यह था कि जैसे ही पुतना ने इस बालक को देखा तो देख के ही उसके हृदय में ऐसी अनुभूति हुई, अरे बाप रे, ये तो बड़ा भयंकर बालक है, ये एक क्षण में पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है, इतना तेज और शक्ति उसमें दिखाई पड़ रही है, इतना नन्ना सा नवजात बालक है ये, इन्फेंट बेबी है। तो उसको और डर न लगे और अब उसको अपने गोद में स्तन पे लेने के लिए न खिचकिचाए नहीं, इसलिए वो आंख बंद कर लेते हैं, क्योंकि सबसे अधिक शक्ति कहाँ होती है मालूम है, इंसान के उसकी आंखों में होती है। आंख बंद होती है तो कुछ नजर नहीं आता क्या चल रहा है, आंखें खोलने का पता चलता है कितना तेज है उसके अंदर, इसलिए वो आंखें मिच लेता है। तीसरा कारण यह है कि सात प्रकार की माताएं होती है और जो परिचारिका होती है वो सातवीं माता होती है। एनीबडी हु इज नर्सिंग शी इज योर मदर। तो क्योंकि परिचारिका बनकर वो आई थी ना, स्तनपान कराने के लिए आई थी, माता बनकर आई थी, तो उसको कोई संकोच नहीं होना चाहिए, आदरपूर्वक उसको प्रस्तुत करना चाहिए अपने आप को, इसलिए उन्हें आंखें बंद कर ली। आपने कभी देखा होगा शायद, जब भी कोई बालक अपने माता का स्तनपान करता है उसकी आंखें बंद रहती है, कभी भी आप देखिए, वो एक सुरक्षा का अनुभव होता है बालक को, माता के गोद में स्तनपान करते हुए बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, इसलिए वो आंखें बंद कर लेता है, रिलैक्स्ड, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। तो इस प्रकार से जो खेसरी पुतना खेसरी थी, जिसको बालक का खून बड़ा पसंद था, अनेक बालकों का खून चूसते वो आ गई थी, ऐसे भयंकर पापी औरत का भगवान मुंह नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आंखें बंद कर ली। और जैसे ही आंखें बंद कर ली, उसने अपने स्तन पर उसको लिया, तो भगवान ने बहुत जल्द जल्द उसका दुग्धपान करना आरंभ किया, और इतना जोर से दुग्धपान किया कि दूध तो पी लिया, कालकूट विष भी पी लिया, और साथ में प्राण भी खींच लिए उसके, और वो जोर जोर से चिल्लाने की, बालक छोड़ छोड़ मुझे, छोड़ छोड़ छोड़, लीव मी, ऐसे करके बालक उसके स्तन पे लटका हुआ है, और ये औरत जो है वो भाग रही है सब जगह पर, छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो, और घर के बाहर, आंगन के बाहर, फिर जंगल में भागने लगती है, और भाग रही है भाग रही है, फिर उसको दर्द इतना असह्य होता है कि वो गिर जाती है, और अपना जो सुंदर रूप बना के रखा हुआ है उसको बनाए रखना उसको आगे मुमकिन नहीं होता है। नो मोर पेशेंस टू मेंटेन द फॉर्म दैट शी हैज अडॉप्टेड, और वो 12 मील की लंबी राक्षसी बन जाती है, अपने हाथ और पैर ऐसे फैलाती है और जोर जोर से चिल्लाती है, उसका रुदन चीखना जो है वो 14 लोकों में पहुंचता है, और सब लोगों को लगता है कि 14 भुवन में इंद्र के वज्र का आघात हो रहा है सब जगह पर, ऐसा क्यों हो रहा है, सबको ऐसा प्रश्न मन में आता है, इतनी जोर से वो चीखती है, उसका चीखना जो है इतना सब जगह फैल जाता है, एक डरावने की आवाज के बहाने। और फिर जब भगवान उसका प्राण चूस लेते हैं निरंतर न रुकते हुए, तो हाथ पांव पटकते हुए हाँ पुतना मर जाती है, और पुतना मर जाती है, तो ऐसा वर्णन किया है कि उसकी नाक की जो छिद्र था ना वो गुफाओं की तरह लग रहा था, उसके दांत जो है कई दांत थे उसके अंदर, वो हल के समान कई हल उसके मुंह पे रखे गए हैं ऐसा लग रहा था। उसका पेट जो था वो एक खाली तालाब की तरह दिखाई पड़ रहा था। उसके जंगा जो है वो ब्रिज की तरह लग रहा था। उसके हाथ जो है वो हाईवे की तरह लग रहे थे, हाँ, और उसके स्तन जो है वो छोटे छोटे पर्वत की तरह लग रहे थे जिसके ऊपर ये काना जो है वो खेल रहा है, बड़े मजे से विहार कर रहा है। और धड़ाम करके आवाज आता है, उस आवाज से सचेत होकर सब लोग वहां भाग भाग के आते। और जब ये गिर जाती है मर के, उसी समय नंद बाबा अपने ग्वाल बालों को लेकर मथुरा से वहां पहुंचते हैं। और सब लोग घर से औरतें और बाहर से नंद बाबा और सारे ग्वाल बाल भाग के वहां पहुंचते हैं। अरे लाला को उतारो, लाला को उतारो, ये कौन भयंकर राक्षसी है जो यहां गिर पड़ी है। तो सब लोग जल्दी जल्दी से कहानी बताते हैं कि ऐसे ऐसे आई थी, ऐसे ऐसे हुआ, फिर ऐसे ऐसे हुआ, अभी देखो क्या हुआ है। सब डर जाते हैं, अरे बाप रे कैसे अचानक संकट आ गया। यशोदा माई कहते हैं कि मेरे ये कर्म इतने खराब है इसलिए कान्हा के ऊपर आते आते ही जन्म लेते ऐसा संकट आ गया है। फिर सारे ग्वाल बाल क्या करते हैं, तुरंत उसको उतार लेते हैं और बछड़े के पूंछ को लेकर भगवान के शरीर में सब जगह पर स्पर्श करते हैं और मंत्रों का उच्चारण करते हैं सुरक्षा कवच के रूप में, कि बालक को कोई अशुभ बात लग गई या नजर लग गई किसी की, और सुरक्षा कवच तुरंत ब्राह्मणों को बुलाते हैं, तुरंत वेद मंत्र बोलने लगते हैं, तुरंत गाय दान करते हैं, अभिष्ट वचन चिंतन करते हैं, और उसमें में ग्वाल बाल सब जाकर ये 12 मील का शरीर जो है वो कई 3-4 गांवों को व्याप्त कर लेता है। उसको काट काट कर उसका एक बड़ा ढेर बनाते हैं और उसको जला देते हैं, दह संस्कार करते हैं, और दूर दूर से सबको अगुरु का सुगंध आता है सबको। तो सब ग्वाल बाल पूछते हैं क्या बात है। तो सब लोग जो ब्राह्मण होते हैं ना विद्वान, वो वर्णन करते हैं कि क्योंकि भगवान के दिव्य होठों का स्पर्श हुआ है इसको, इसके वजह से जो दर्द हुआ है इस दर्द में उसके सारे पाप जो है वो नष्ट हो गए केवल भगवान के एकमात्र स्पर्श से। तो भगवान को मुमकिन था कि उसको दर्द देकर पूरा पाप खत्म करके उसको शुद्ध बनाकर फिर जीवन दान देते उसको, लेकिन भगवान जानते थे बड़ी पापी है ये, जीवित रहेगी तो और लोगों को विष डालकर लोगों को मार सकती है। तो एक कृपा की भगवान ने उसके ऊपर, एक तो पहले पाप से मुक्त कर दिया, हाँ, और दूसरा उसके जीवन भी छीन लिया, क्योंकि भगवान उसको एक श्रेष्ठ उच्चतम जीवन देना चाहते थे गौलोक वृंदावन में, माता यशोदा के धात्री के रूप में, असिस्टेंट के रूप में, एक माता के रूप में भगवान ने उसको प्रमोशन दिया। इतने कृपालु है भगवान, इतने दोष थे उसके अंदर अनेकों, पापी थी वो बहुत, बच्चों का खून पीने वाली थी, खेसरी थी, इतना सारा बुरा बैकग्राउंड होने पर भी भगवान ने उसमें से एक भी चीज स्वीकार नहीं की, केवल एक चीज पर ध्यान दिया कि ये माता बनकर मुझे दूध पिलाने आई थी, माता बनी मेरी माता वो, और उसी को पकड़कर भगवान ने उसको मैग्नीफाई किया और एक दिव्य धात्री का रूप दिया उसको। वास्तविक कर्मों के हिसाब से उसको नरक में जाकर अनंत जन्मों तक दुख भोगना था, लेकिन भगवान इतने दयालु है कि ऐसा कार्य केवल श्री कृष्ण ही कर सकते हैं और कोई भी अवतार में ऐसा कार्य नहीं हो सकता है। इतने बड़े पापी जीव को अपने कोमल कोमल होठों से दुग्ध खींचकर उसको पूरा शुद्ध बनाकर मां का रूप दे दिया उसको। और कौन थी ये पुतना पूर्व जन्म में, ये बलि महाराज के समय पर बलि महाराज की बहन थी, रत्नमाला उसका नाम था। और जब वामन देव वहां पर आए प्रकट हो गए सुंदर बालक के रूप में, सुनहरे रंग के प्रकाशमान तेजमान बालक के रूप में वहां पर जब प्रकट हो गए ब्राह्मण बटु, तो रत्नमाला ने देखा वामन को और उसको लगा कि कितना प्यारा बालक है, काश मैं उसे मां बनकर अपना दूध पिलाऊं। ऐसी भावना तुरंत जागृत हो जाती है उसके मन में, और फिर देखती है कि आगे जाकर वो त्रिविक्रम रूप धारण कर लेता है, दो पैरों में पृथ्वी और स्वर्ग लोक नाप लेता है और अपने भाई की सारी संपत्ति छीन लेता है, उसको भिखारी बना देता है। तो उसको लगता है कि काश मैं इस बालक को मार डालूं। दोनों प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं एक ही लीला के अंदर, तो बालक को दूध पिलाऊं और बालक को मार डालूं, ये दोनों भाव एकत्र होकर अगले जन्म में उसका जन्म पुतना के रूप में होता है, और वो स्तनपान कराती है लेकिन विष डालकर। ऐसा होने पर भी उसको भगवान दिव्य स्थान देते, इस तरह से पुतना का उद्धार होता है। और पुतना जो है वो ये एक मिथ्या गुरु होता है, उसका प्रतीक है ढोंगी गुरु, जो दिखने में लगता है गुरु लेकिन है बहुत भोगी, है बहुत छल कपटी, लोगों को फंसाता है, लोगों को दिव्यता का नाटक करता है, लोगों से पैसे और भोग छीनता है। उसी दूध की तरह दिखने में सफ़ेद है लेकिन कालकूट विष मिला हुआ है उसके अंदर, कोई पिएगा तो लगेगा दूध पी रहा है लेकिन कुछ ही क्षणों बाद मर जाएगा वो। उसी तरह से ऐसे ढोंगी साधु जो होते हैं जिनकी शिक्षा लगती है वह भगवान की बातें कर रहे हैं, लेकिन जब शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो आध्यात्मिक जीवन का नाश होते हुए नजर आता है। तो पूतना उस मिथ्या गुरु का प्रतीक है, और श्री कृष्ण भगवान की कृपा से ऐसे मिथ्या गुरु का जो प्रभाव है वो हमारे जीवन से नष्ट हो सकता है, हम सच्चे रास्ते पर चल सकते हैं भगवान की कृपा से। जब पूतना का देहांत हो गया और मुक्ति हो गई तो उसके बाद 3 महीने के बाद में जैसे ही भगवान के जन्म का नक्षत्र दोबारा आया, रोहिणी नक्षत्र, उससे भगवान ने क्या किया, भगवान ने जो पीठ पर सोया करते थे अभी वो टर्न हो गए, बाजू में आ गए। हाँ, हर एक घटना जो भगवान के जीवन की है ना वो एक उत्सव है, एक मनाने जैसा उत्सव है हर एक घटना। दांत आए तो उत्सव है, तोतले तोतले बोल बोलने लगे तो भी उत्सव है, हाँ अभी वो रेंगने लगे क्रॉलिंग तो भी उत्सव है। तो ये उल्टे हो गए और रेंगना आरंभ किया, तो यशोदाबाई ने सोचा उत्सव होना चाहिए, इसलिए सब संतों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, हाँ सबको मक्खन दूध दही चावल सब भेंट में दिया, गाय दान किया, मंत्र बुलवाए, अभिषेक करवाया, सुरक्षा कवच बुलवाए, बड़ा सुंदर माहौल था सब जगह पर, वातावरण इतना बढ़िया था, सब लोग धुंधबियाँ बज रही थी, भेरियाँ बज रही थी, वातावरण संगीतमय आनंदमय नृत्यमय गीतमय हो गया था। उस समय एक बड़ा कमरा था, जैसे होता ना गैरेज होता ना गैरेज, हमारा छोटा सा होता है ये, ऐसा जो ये मंदिर का ये प्रांगण है ना ऐसा उनका एक गैरेज था छोटा सा, उसके एक कोने में एक बड़ा बिस्तर लगा गया था जिसमें यशोदा माई और बालक दोनों एक साथ सो सकते हैं और झूल भी सकते हैं। पलना था वो, पलना कितना विशाल होगा वो, यशोदा माई भी उस पर साथ सो गई, बालक को भी सुलाया दूध पिलाकर, और 5 वर्ष के उम्र के बालकों को बोला कि अभी आप यहाँ पर रहो, बालक विश्राम कर रहा है, जब रोएगा तो मुझे बुलाना। तो रोते हुए बालक को स्तनपान करा के सुला दिया अच्छे अच्छे गीत गाकर, और जब सो गया तो फिर आगे लोगों को देखभाल करने के लिए, उत्सव को संपन्न करने के लिए निकल गई वो। एक बड़े विशाल प्रांगण में कोने में वो बिस्तर लगा हुआ था, और वो बिस्तर लगा था किसमें, एक शकट के नीचे, एक बड़े प्रांगण के अंदर एक गाड़ी, मतलब एक बैलगाड़ा होता है ना गाड़ा जिसमें बर्तन रखते हैं सामान रखते हैं, उसके नीचे वो बड़ा बिस्तर का झूला लगा हुआ है, वो भी उसका छोटा सा हिस्सा है। तो जी गोस्वामी वर्णन करते हैं कि वो जो पूरा गैरेज था ना मंडप प्रांगण था वो पूरा वो छकड़ा था शकट, और उसके कोने में बिस्तर लगा हुआ था, उसमें यशोदा माई सो रही है और उठ के चली जाती है 5 साल के बालकों को गार्ड के रूप में रख के। कुछ देर बाद बालक जगता है भूख से, रोता है जोर जोर से, तो इतना कोलाहल है संगीत बज रहा है मृदंग बज रहा है सब जगह को सुनाई नहीं पड़ता है। तो बालक क्रोध में आता है और अपने पाँव जो है वो जोर जोर से ऐसे हिलाने लगता है, आप देखा है ना बालक को जब भूख लगती है दोनों पाँव हवा में उड़ाने लगते हैं, हाथ और पाँव दोनों, रोने लगता है। तो उसमें पाँव हिलाते हिलाते बाएं पैर की कुछ उंगलियां उस रथ के उस चक्र के आरियों को लग जाती है और धड़ाड़ से सब चकनाचूर होकर जमीन पर आ जाता है वो। सबको आश्चर्य होता है इतना जोर से आवाज आता है, सब म्यूजिक और मृदंग सबके ऊपर जोर से आवाज आती है, तो सब लोग सब म्यूजिक वाद्य बजा बंद करके भाग के आ जाते हैं, क्या हो गया देखते हो तो क्या, नन्ना सा बालक जो है वो रो रहा है हाथ पांव ऊपर करके, और ये पूरा बड़ा जो प्रांगण में लगा हुआ छकड़ा जो है वो पूरा बर्तन के साथ में जमीन पर क्रैश हो गया है, टुकड़े टुकड़े हो गए उसके। सबको आश्चर्य हुआ, वो 5 साल के बालकों को पूछते हैं बेटा क्या हो गया, तुमने क्या देखा क्या नहीं, लहा हमने देखा कन्हैया ने ऐसे ऐसे पांव हिलाए कुछ उंगलियां लगी और वो चक्र टूट गया, वो सारा छकड़ा नीचे टूटकर गिर गया, बालक को कुछ नहीं हुआ वो तो आराम से हाथ पांव हिला रहे। अरे इसका कारण ये था कि उत्कच नाम के राक्षस को कंस ने भेजा था ये उत्कच नाम का राक्षस जो था वो पहले बहुत बड़ा आदमी था, देवताओं जैसा उसका बहुत सुंदर शरीर था। तो लोमस ऋषि के आश्रम में गया था एक बार वो, और गर्व के वजह से, बल के गर्व के वजह से, घमंड के वजह से सारे वृक्ष वृक्षा बगीचा का नष्ट कर दिया उसने वहां जाकर। और ये सब करने के बाद में रुबाब से जाके खड़ा हो गया लोमस मुनि के सामने। तो लोमस मुनि ने कहा, अरे तुम्हें अपने शक्ति और शरीर पर बड़ा गर्व है, ये शरीर तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। उसी समय जैसे सांप के ऊपर से उसका त्वचा निकल के गिरता है ना, स्नेक क्या बोलते हैं उसको, स्नेक स्किन, वैसे उसके सूक्ष्म शरीर के ऊपर से स्थूल शरीर गिर गया नीचे। अचानक उसको एकदम नम्रता आ गई, अरे बाप रे इतना बड़ा मेरा विशाल सुंदर शरीर था एक क्षण में नष्ट हो गया। तो लोमस ऋषि के शरीर चरणों में गिर गया। वो महाराज जी माफ करना, मैंने आपको बल को समझा नहीं, मैं उस शाप दीजिए। तो उन्होंने कहा कि इस चाक्षुष मनमंत्र के अंत में जब वैवस्वत मनु का वैवस्वत मनु का काल शुरू हो जाएगा ना, तो उसमें 28वें द्वापर में जब श्री कृष्ण आएंगे उस समय उनके चरणों के स्पर्श से आपका उद्धार हो जाएगा। तो ये उत्कच जो है उसको वायु का शरीर दिया, मतलब भूत बनाया उसको। जो स्थूल शरीर जो होता है वो 5 महाभूत से बनता है, एक वायु का बनेगा तो उसको भूत कहते हैं, अदृश्य होता है वो, खाली हवा का झोंका आता है ऐसे, आवा दिखाई नहीं पड़ता किसको। तो वो वायु शरीर वाला भूत रूपी उत्कच राक्षस कंस के आदेश पे वहां पर आया। उसने देखा कि बालक जो है छकड़े के नीचे बिस्तर पे सो रहा है, उसको भी देख के कुछ दिव्य अनुभूति उसको होती है, जैसे पुतना को हुई थी। और सोचता है पुतना इसको मारने के लिए भेष बदल कर आई थी, मैं अभी वो ट्रिक नहीं करूंगा, मैं अपनी ट्रिक करूंगा, मैं इस छकड़े पर सवार हो जाऊंगा। और जैसे ही वो छकड़े पर सवार होता है तो उसके पहिए जमीन पर आधे ढस जाते हैं, उसकी आरिया बेंड हो जाती है, इतना भार। और कहते सोचता है कि मैं अभी इस पर आरूढ़ हो जाऊंगा और इसको इस बालक पे गिराऊंगा और इसके आघात से बालक मर जाएगा। लेकिन वो सोचने के पहले ही बालक जो अपने पैरों से स्पर्श करके उसको ही चकनाचूर कर देता है और उत्कच की मृत्यु हो जाती है। एंड लो एंड बिहोल्ड, देखो अहो आश्चर्यम क्या होता है, 100 पहियों वाला दिव्य रथ वैकुंठ से आता है। वैकुंठ से विष्णुदूत आते हैं फूल की मालाएं लेकर, और इस वायु शरीर से मुक्त हुए हुए दिव्य आत्मा को दिव्य शरीर प्राप्त होता है और रथ में बैठकर गौलोक धाम चला जाता है। हेलो श्री कृष्ण भगवान की। इस तरह से भगवान का नाम पड़ता है शकट भंजन, रूप गोस्वामी उनका वर्णन करते हैं। शकट भंजन यानी शक्टासुर का जिसने भंजन किया, इसको मुक्त कर दिया। तो ये शक्टासुर जो है इसका वध होने के बाद में फिर 1 साल होता है भगवान के जन्म को, और उस समय भी उत्सव मनाया जाता है, सब साधु आते हैं, सब ब्राह्मण आते हैं, ब्रजवासी आते हैं, धूमधाम चली रहती है। उस समय ये गोद में बिठाकर बालिका बालक को दूध पिलाती रहती है। अचानक जो बालक है वो मेरु पर्वत गिरिराज गोवर्धन की समान भारी हो जाता है, इतना भारी वजन हमारे कन्हैया का कभी भी यशोदा मैया ने अनुभव नहीं किया था। तो वो झट से उसको जमीन पर रख देती और सोचती भी नहीं है कि क्या करना है, अचानक बालक को जमीन पर रखती है और उठ के अंदर किचन में चली जाती है। ऐसा कभी होता नहीं है, कोई बालक को जमीन पर रखना है तो पहले कुछ बिछाएंगे, जमीन पर रखेंगे, हाँ फिर वहाँ पास में बैठेंगे, फिर वापस उठाने की कोशिश करेंगे, फिर उठाने का हो गया तो उठकर अंदर बिस्तर में अंदर लिटाएंगे उसको, एक क्षण में उसको नीचे रखते हैं। इतना भारी वजन होने की वजह से कहते हैं कि जैसे फलों के वजन से वृक्ष जो झुक जाते हैं, वैसे कन्हैया को गोद में लेकर मैया झुक गई थी, उसको खड़े रहना मुमकिन नहीं हुआ था। झट से उसको जमीन पर रखती और तुरंत चली जाती है अंदर। उसी कुछ ही क्षणों के अंदर तृणावर्त जो है वहां पर आ जाता है, और तृणावर्त जो है वो हवा का झोंका के रूप में आता है, तूफान के रूप में आता है, जिसको हम कहते हैं भंवर, हाँ हवा का भंवर जो होता है ना, उस रूप में आता है, साइक्लोन उसको इंग्लिश में कहते हैं, जो गोल 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 घूमता है, क्या तृणावर्त मनी, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, सब हाँ हवा का झोंका गोल 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 होता है, धूल जमा होती है और कई 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 मील तक ये जो भयंकर हवा जो है वो धूल के रूप में सब जगह पैदा होती है और सारी ब्रजवासियों की आंखों में चली जाती है। दिन में अंधेरा हो जाता है और इस भयंकर तूफान में सारे ब्रजवासी यहां वहां भागने लगते, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है अचानक। और उस भंवर के बीच में वो तृणावर्त राक्षस जो है वो भगवान बालक को उठाकर चला जाता है आकाश में 8 योजन चला जाता है, ऐसे एक जगह वर्णन दिया है। दूसरी जगह वर्णन ये दिया है कि वो इतना ऊपर जाता है कि सारे स्वर्ग लोक के ऊपर चला जाता है और उसका जो भंवरा है, जो धूल का जो तूफान उठाया उसने, उसका कष्ट देवताओं को भी होता है। लेकिन जब वो ऊपर ऊपर जाते रहता है तो भगवान उसके हाथ में थे, ऐसे पहले उसने हाथ से उठाया था तो वो उड़ते उड़ते भगवान उसके ऊपर ऊपर और चढ़ते जाते हैं, उसके कंधे पे ऊपर चढ़ के उस पर सर पे चढ़ जाते हैं और अपने नन्हे नन्हे कोमल मुलायम मक्खन जैसे मुलायम हाथों से उसका गला दबा देते हैं। उसके पहले कंधे पर बैठकर सभी देवताओं को दर्शन देते हैं, देवता लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, चलो ये तृणावर्त के बहाने भगवान का दर्शन हो गया। स्वर्ग लोक में भगवान के बाल लोक पर दर्शन कभी होता नहीं है, भगवान स्वयं अभी सब देवताओं के ऊपर प्रेम से इस राक्षस के कंधे पर बैठकर दर्शन दे रहे हैं और सबको आनंद देने के बाद में उसके गले का जो नरड़ी है ना उसको ऐसा दबाते हैं कि आकाश में ही इतने ऊंचाई पर उस राक्षस का वध हो जाता है। और वो मरा हुआ राक्षस जो है वो इस बालक को अपने गले पर चिपका हुआ छोड़ 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 चिल्ला रहा है, वो से पुतना चिल्लाई थी वहीं पर, बोलते मराठी में नरडीचा घोट घेतला, वहीं पर गला दबाकर उसका वध कर दिया। और इतना महान विशाल काय राक्षस जो है इतने स्वर्गलोक की ऊंचाई से जो सीधे आकर चट्टान पे गिर गया गोकुल के जरा बाहर, भगवान ने जानबूझ के उसको साइड में गिराया और इतने भयंकर चट्टान में गिरा कि उसके अनेक टुकड़े टुकड़े होकर टूट गया, वो मराठी में कहते ना ठिकरा ठिकरा उड़ा लिया, इतने टुकड़े हो गए उसके, किस गिनती नहीं उसकी, बस उसकी आवाज से सब लोग भाग के आते हैं। तब तक वो बादल जो क्या कहते हैं तूफान जो है वो थम जाता है, उस तूफान के बीच में आके ये गिर जाता है, सब लोग भाग के आते हैं और जो टुकड़े टुकड़े बिखरे हुए हैं एक टुकड़े के ऊपर बालक खेल रहा है, मजे से खेल रहा है। फिर यशोदा मैया भाग भाग के आती है, फिर ब्राह्मणों को बुलाती है, फिर मंत्रों का पठन करती है, हर बार राक्षस का वध होने के बाद में मंत्रों का उच्चारण, गाय के पूंछ से सब शरीर को स्पर्श, ब्रज रज से स्नान, तेलों से मलना, श्लोक बोलना, रक्षा कवच बोलना और स्तनपान कराना, यह हमेशा की विधि थी। प्रभुपाद जी कहते हैं स्तनपान करने का मतलब क्या होता है, जब बालक स्तनपान नहीं करता है मतलब वो बीमार है, वो अप्राकृतिक अवस्था में, नेचुरल अवस्था में नहीं है वो। और जब कोई संकट आया है और उसके बाद में अगर बालक दूध पीता है मतलब वो संकट से दूर हो गया है, इट्स अ साइन ऑफ नॉर्मल हेल्थ। साथ साथ में स्तनपान का मतलब है सुरक्षा, आश्रय, शेल्टर। हर बार ना चुके हुए भगवान को हर संकट के बाद माता ने स्तनपान कराया है। स्तनपान का बड़ा महत्व है, केवल परिपूर्ण आहार नहीं है वो, एक ही बात नहीं है, परिपूर्ण आहार तो है, एंटीबॉडी सब उससे प्रतिकार शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन दिव्य आध्यात्मिक अनुभूति के लिए, दिव्य आध्यात्मिक पोषण के लिए यह स्तनपान बहुत जरूरी है, क्योंकि स्तनपान के माध्यम से बालक को आध्यात्मिक पोषण प्राप्त होता है। जब माता बड़े ध्यान से प्रेम पूर्वक प्रार्थना पूर्वक भगवान का ध्यान करते हुए बालक को स्तनपान कराती है तो पोषण के साथ साथ, शारीरिक पोषण के साथ साथ उसको दिव्य आध्यात्मिक पोषण प्राप्त होता है और आध्यात्मिक जीवन के लिए शक्ति प्राप्त होती है, वो अच्छा भक्त बनता है। इसलिए हर माता को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए, मतलब एकांत में कमरे में किसी से बात न करते हुए, व्हाट्सएप को ना देखते हुए, फ़ोन पर बात न करते हुए, यहाँ वहाँ की बातें झगड़ा न करते हुए, सासू से पति से वाद विवाद न करते हुए एकांत में बैठकर बालक को स्तनपान कराना चाहिए, क्योंकि आपको एक दिव्य शक्ति अपने बालक को फ्री में प्रदान करने का मौका मिल रहा है, ये शक्ति है उसके अंदर। माता हर बार यहाँ पर कृष्ण भगवान को स्तनपान करा रही है, इसका अर्थ यही है। तो ये तृणावर्त जो है जैसे ही मर गया उसके शरीर से ज्योत निकली और भगवान में विलीन हो गई। तो राजा बहुलाष्टमु ने प्रश्न पूछा ये तृणावर्त कौन था, तो नारद मुनि उसको बताते हैं कि सहस्त्राक्ष नाम का एक राजा था जो बड़ा धार्मिक और बड़ा साधु भाव का था। नर्मदा के किनारे एक बार वो अपने पत्नियों को लेकर विहार करने आया था और उनके विहार के कोलाहल के आवाज़ से वहाँ पर दुर्वासा मुनि दुष्ट प्रकट हो गए, वो ध्यान कर रहे थे वहाँ पर, डिस्टर्ब हो गए वो। उन्होंने राजा सहस्राक्ष को शाप दिया, तुम राक्षस बन जाओ। राजा ने, वो क्या हो गया कि वो जब वहाँ पर आनंद ले रहे थे अपने पत्नी को साथ में, दुर्वासा का दर्शन करके भी उन्हें प्रणाम नहीं किया, ऐसे ही ध्यान में नहीं आया, उनके दुर्लक्ष हो गया उनकी तरफ से, तो शाप दिया उनको, राक्षस बन जाओ। फिर चरणों में गिरे कि मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं था कि आपको अपराध करूं, मुझे उस शाप दीजिए, मैं आपके शरण में आया हूं। तो दुर्वासा मुनि कहते हैं कि जब भगवान के दिव्य शरीर का आपको स्पर्श होगा, उनके शरीर का चरणों का स्पर्श होगा, तब आपका उद्धार होगा। तो ये सहस्राक्ष जो है वो तृणावर्त बन गया। उसने कंस के साथ में भी युद्ध किया था, कंस को उसने कई हजारों योजन आकाश में ले गया था वो, और कंस स्वयं इतने भारी बन जाते हैं तो ये जीवित ही नीचे आके जमीन पर गिरता है लेकिन मरता नहीं है। उसके बाद कंस का सेवक बन जाता है, एक भगवान उसका वध कर देते हैं। तो ये तृणावर्त जो है वो किसका प्रतीक है, कौन से अनर्थ का प्रतीक है? प्राइड ऑफ स्कॉलरशिप, विद्वत्ता का अहंकार होता है ना, उसका प्रतीक है ये। ड्राई आर्गुमेंटेटिव नेचर, वाद विवाद की जो प्रवृत्ति होती है ना हमारी, उसका भी प्रतीक है। और शुष्क तर्कशास्त्र जो है उसका भी प्रतीक है, यूजलेस आर्ग्यूमेंट एंड लॉजिकल डिस्कशन। ये जो प्रवृत्ति हमारे अंदर की है ये श्री कृष्ण भगवान नष्ट करते हैं। जो व्यक्ति श्री कृष्ण भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, ये तृणावर्त की जो अनर्थ प्रवृत्ति है वो हमारे से नष्ट हो जाती है। तृणावर्त को मारने के पश्चात एक दिन माता यशोदा और रोहिणी अपने बालकों को स्तनपान कराती रहती है, और स्तनपान कराने के लिए यशोदा उंगलियों से कृष्ण का मुख खोलती है, और क्या होता है, भगवान के मुख में उसको ब्रह्मांड का दर्शन होता है। और बड़ी विस्मयचकित हो जाती है, अरे बाप रे, ये मैं क्या देख रही हूँ, इतने नन्हे से मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है, सारे सप्तद्वीप, सप्त सागर, 14 भुवन, अनंत ब्रह्मांड, उसके अंदर मैं भी झांक रही हूँ, वो भी देखता है, दिखाई पड़ता है। तो अहो आश्चर्यम ऐसे कहती है, भगवान तुरंत मुंह बंद कर लेते। ये पहला ब्रह्मांड दर्शन है। 2 बार ब्रह्मांड दर्शन हुआ, एक बार दूध पिलाने के लिए मुंह खोलने का प्रयास किया तब हुआ, और दूसरी बार जब माटी खाया आलाला ने, तो माटी को दिखाने के लिए मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। 2 ब्रह्मांड दर्शन है, ठीक है। तो उसके बाद में गर्ग मुनि को वसुदेव जी मथुरा से इन दोनों बालकों का नामकरण विधि करने के लिए भेजते हैं। तो गर्ग मुनि जो इनके क्या कहते हैं पारिवारिक पुरोहित थे, फैमिली प्रिस्ट, और वसुदेव बड़े चिंतित रहा करते थे, पता है कि इनको कुछ पता नहीं है लेकिन दोनों बालक मेरे ही हैं, एक को तो पता है कि मेरा है, दूसरा मेरा है, पता नहीं इनको, इनका संस्कार करना मेरा कर्तव्य है, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन गर्ग मुनि को सब पता है, उनको सब बोल के भेजते हैं संदेश के साथ। तो संदेश के अनुसार गर्ग मुनि वहाँ पहुँचते हैं, उनका सत्कार होता है, उनका पूजा होती है, उनकी अर्चा होती है, और उनको फिर वो कहते हैं कि मुझे वसुदेव ने भेजा है आपके 2 दिव्य पुत्रों का नामकरण करने के लिए। तो वो कहते हैं कि कंस का बड़ा आतंक है, एक के बाद एक यहाँ पर राक्षस आ रहे हैं, मेरे कर्म ऐसे फूटे हुए हैं, मेरी वजह से, दुर्भाग्य की वजह से मेरे बालक पर इतना संकट आ रहा है, एक के बाद एक पुतना आई, फिर शक्रासुर आया, फिर अभी तृणावर्त भी आया, इसलिए हम इसका बड़े पैमाने पर नामकरण नहीं करेंगे, छोटे पैमाने पर गुप्त रूप में करेंगे, इसकी वजह से बाद में प्रॉब्लम हो गया। हाँ, एक बार जब ऐसे चर्चा करते बैठे थे गोवर्धन उठाने के बाद में, सब बड़े आश्चर्यचकित होकर वहां बैठे हुए थे, अरे तुम्हारा बालक नंदलाला कितना बड़ा दिव्य बालक है, अरे इतने बड़े गिरिराज को उठा लिया उसने, जरूर कोई देवता होगा, जरूर कोई साधु संत होगा, जरूर कोई बड़ा ऋषि होगा, बड़ा कोई योगी होगा, सिद्ध आत्मा होगा। तो उस समय नंद बाबा कहते हैं, हाँ गर्ग बाबा ने कहा था ये आगे उठाएगा। बोला कब कहा था गर्ग बाबा, गर्ग मुनि कब आए थे यहाँ पर? अरे ये तो गुप्त बात थी, मैंने बोल दी यहाँ पर। सारे खड़े हो गए ब्रजवासी, बोले हमारे अपने आप को अपनी बिरादरी के समझते हो, अपने आप को हमको अपनी बिरादरी के मानते हो, भाई मानते हो, भाईचारा करते हो, और हमारे से इतना बड़ा उत्सव छुपाए रखते हो, आज बता रहे हो इतने साल के बाद, 7 साल हो गए अभी उसको, चलो आज हम नंद महाराज को अपनी बिरादरी से हद पार कर देते, वी रस्टिकेट हिम फ्रॉम आवर कम्युनिटी। तो वृषभानु महाराज खड़े हो जाते हैं, अरे इनको रस्टिकेट मत करना, समय ऐसा था, बांका था, हाँ कंस का इतना भय था, लगातार राक्षस आ रहे थे, कैसे वो करेगा इतने धूमधाम से नामकरण विधि, इतने संकट आ रहे हैं उनके ऊपर, जैसे बड़ा उत्सव होगा सबका ध्यान जाएगा तो राक्षस भी वहीं पर आएगा ना। तो ये गर्ग मुनि का सलाह था उनके लिए, इसलिए वो गौशाला में गुप्त रूप में किया था, इसलिए आपको नहीं बुलाया गया था। अरे वृषभानु नंद का पक्ष लेता है, इसको भी हद्दबार कर दो। फिर बड़ा बांका प्रसंग आता है, नंद बाबा वृषभानु वहां दोनों राजा है, लेकिन मित्र भी है, लेकिन राजा है, दोनों को हद्दबार करने की बात कर रहे हैं, तो कुछ ग्वाल बाल खड़े हो जाते दूसरे। अरे कहते, अरे वृषभानु बाबा को हद्दबार करने की बात मत करना, इनके महाप्रतापी कन्या के बल से प्रभाव से अभी नंदगांव बरसाने में राक्षस नहीं आ रहा है, आने आ रहा है ना। आपने पढ़ा है क्या भागवत में, किधर नंदगांव बरसाने में राक्षस आया है? जब ये गोकुल छोड़कर आए ना, वो रावल छोड़कर आए, गोकुल छोड़कर आए, उसके बाद नंदगांव बरसाने में कभी राक्षस प्रवेश नहीं किया कभी। लास्ट कंस आया था, लास्ट बेचारा आया नंदगांव और बरसाने की सीमा में, वही कन्या बन गया वो लेडी, ही बिकेम अ ब्यूटीफुल लेडी गोपी। आप और हम गोपी बनेंगे तो बड़ा खुश हो जाएंगे, क्या जीवन का परिपूर्णता प्राप्त हो गया। लेकिन कंस को बड़ा दुख हो रहा था, ये कैसे कन्या बन गया मैं, दिग्विजयी पुरुष, महादिग्विजयी वीर पुरुष, जिसके तलवार के चमक से सब देवता भी कांपते थे, वही इन सब गोपियों के सामने कन्या बन गया। रोने लगा और फूट फूट के रोने लगा। फिर एक दिन श्री जी की कृपा से किशोरी कुंड में स्नान करवा के फिर दोबारा उसको कंस का पुरुष शरीर प्राप्त करवा दिया। ये कथा जो है वो चार पांच जो ब्रजवासी खड़े होकर सुनाते हैं, अरे वृषभानु बाबा की कन्या को यहाँ से मत हटाओ, मतलब वृषभानु बाबा को हद्दपार मत करो, वही कन्या है इनकी महाप्रतापी, इसलिए आप लोग यहाँ पे आनंद ले रहे हो। तब उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है, सब लोग फिर नंद बाबा को हद्दपारी करने की और वृषभानु बाबा के खंदपारी करने की बात को छोड़ देते हैं। तो ये प्रसंग है कि गुप्त रूप में गौशाला में उनका नामकरण विधि हो रहा है। तो गर्ग मुनि जो है बड़े ही आनंद से इन दोनों का नामकरण करते हैं गौशाला के अंदर। बलदेव जी के बारे में शुरुआत करते हैं, कहते हैं योगी जन इनमें रमण करते हैं और सब में ये रमते हैं और अपने गुणों द्वारा अपने भक्तों को रमण करवाते हैं, इसलिए इनका नाम राम होगा। योग माया द्वारा इनका संकर्षण किया गया है, दोनों परिवारों को जोड़ दिया है, नंद महाराज के और वसुदेव के, हाँ मथुरा के लोगों का और गोकुल के लोगों का संपर्क करा दिया, संबंध करा दिया, इसलिए इनका नाम संकर्षण होगा। अशेष जगत जब समाप्त होता है तो यही शेष रह जाते हैं, इसलिए इनका नाम शेष भी है। When everything gets destroyed, he still remains, the remainder, the शेष is बलराम जी। और सबसे अधिक बलवान, सब बल के स्रोत होंगे, इसलिए उनका नाम बल भी होगा। और विश्व उनको बड़े प्रेम से बलराम जी के स्वरूप में मंगाएगा। ये बलराम जी सब ब्रजवासियों को आनंद देंगे, अपने बल के प्रदर्शन सबको प्रसन्न करेंगे और बड़े बड़े संकटों से सबको बचाएंगे, ऐसे गर्ग मुनि कहते हैं। फिर उसके बाद में कृष्ण का नामकरण का समय आता है, तो गर्ग मुनि कहते हैं क से कमलाकांत, यानी कि लक्ष्मी देवी के पति हैं, रू यानी राम स्वयं आनंद देने वाले हैं, श यानी षड ऐश्वर्य पूर्ण है, न यानी नरसिंह भगवान का जो सुरक्षा कवच शक्ति है ये इनमें भी है, सबकी रक्षा करने की शक्ति, सब ब्रज की रक्षा करेंगे ये। अ अग्निभोग यानी अग्नि रूप में ब्राह्मणों के मुख से, अग्नि के मुख से ये भोजन स्वीकार करेंगे, हविष्य स्वीकार करेंगे, उसका पान करेंगे, इस तरह से उनका नाम कृष्ण होगा। उसका और भी एक अर्थ है, क्योंकि ये सर्व आकर्षक है, सर्व आकर्षक इति कृष्णा, सभी को आकर्षित कर लेते हैं, सबका दिल मोहित कर लेते हैं, इसलिए कृष्ण के नाम से जाने जाएंगे। और इनके अनंत नाम है, जितने जितने लीला करते जाएंगे उतने अनंत नाम उनके होंगे, एक एक नाम का सहारा लेकर जो जो उनके भक्त बनेंगे वो सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाएंगे। जो व्यक्ति इनका जो चरणों का भक्त बनेगा वो व्यक्ति के जीवन में कभी भी शत्रु अपना प्रभाव डाल नहीं सकते हैं और हमेशा विजयी रहेगा वो व्यक्ति, और सभी प्रकार के संकटों से उस व्यक्ति की ये कृष्ण जो है रक्षा करेगा। सत्ययुग में ये शुक्ल वर्ण से आया था, त्रेता में रक्त वर्ण से, अब द्वापर में कृष्ण वर्ण से, श्याम वर्ण से आए हैं, पीत वर्ण से भी आए थे ये। और दूसरा नाम उसका वासुदेव होगा, क्योंकि ये वसुदेव का पुत्र भी है, इसलिए वासुदेव नाम होगा। और वसु यानी इंद्रियों का नियंत्रक चित्त, वसुदेव अर्थात चित्त में स्थिर रहकर चेष्टाशील रहकर अपने जीवन को बिताने वाला, इसलिए वासुदेव नाम से जाना जाएगा। ये राधा पति होंगे क्योंकि राधा के इनका साथ उनका विवाह होगा। ये साक्षात परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र हैं, असंख्य ब्रह्मांड इनके अधीन है, ये गोलोक के निवासी हैं, ये तुम्हारे घर पधारे हैं, ये तुम्हारा दिव्य भाग्य है नंद महाराज। पृथ्वी का भार उतारना, कंस आदि दुष्टों का संहार करना और भक्तों की रक्षा करना, इस दिव्य होतु से वो आपके घर में पधारे हुए हैं। इनके नामों का अंत नहीं है, हर लीला के सब अनुकूल उनका नाम होगा और जाते जाते वो ये गोवर्धन को भी उठाएंगे, इनका नाम गिरधर होगा, ऐसा भी हिंट देते हैं। इस तरह से गर्ग मुनि का ये नामकरण समाप्त होता है। वो कहते हैं कि इन्होंने पिछले जन्मों में, पिछले अवतारों में कई लोगों का जीवनों का रक्षा किया है, ये बड़े शक्तिशाली है। ये बालक नारायण की तरह शक्ति, सौंदर्य और ऐश्वर्य आदि सब में बढ़ते रहेगा, इसलिए इस बालक का लालन पालन बड़े सावधानी से करना। ये आने वाले संकटों से ब्रज को बचाएगा, आपके जीवन में आनंद प्रदान करेगा। इसके कुछ दिन बाद में कृष्ण बलराम जो है वो रेंगने लगते हैं, फिर उत्सव होता है अपने हाथ और घुटने के बल पर, बहुत आनंद देते हैं। उनके घुंघरू और उनके कटी करधनी का जो आवाज़ है वो इतना अद्भुत होता है, सभी ब्रजवासियों को आनंद प्राप्त होता है। यहाँ वहाँ दौड़ने लगते हैं, एक साधारण बालक की तरह दूसरों को देखकर डर के अपनी माता के गोद में भाग जाते हैं, कभी कभी मिट्टी में गिर जाते हैं, कीचड़ में गिर जाते हैं, उनको माता जो है केसर और चंदन से श्रृंगार करती है, फिर वो कीचड़ में गिर जाते हैं, कभी कभी कीचड़ अपने हाथ से बदन को लगा लेते हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी बछड़ों की पूछ पकड़ते हैं और उसको हिलाते हैं तो बछड़े भागने लगते हैं, फिर पूछड़ों को पूछ को पकड़ के रखते हैं, फिर पेट के बल पर गिरते हैं, फिर केसर और कुमकुम और चंदन का जो मिक्सचर है वो जो गोबर और गोमूत्र का मिक्सचर है उसमें मिल जाता है और उसके स्केटिंग करते हैं पूरे गौशाला के अंदर। यशोदा माई, रोहिणी आँखों में आंसू लेकर देखते हैं, सभी गोपियों को बुलाते हैं, आओ देखो देखो कितना सुंदर यहाँ पर दर्शन है। इस तरह से कुछ देर के बाद चलने लगते हैं, चलने लगने पर तुरंत उस समवयस्क दोस्त मिल जाते हैं उनको और फिर हो जाती है शुरू माखन चोरी। माखन चोरी है कृष्ण भगवान की लीलाओं का सबसे मधुर प्रसंग है। हमारे पास कुछ मिनट बाकी है, हम कोशिश करेंगे। जैसे ही चलने लगते हैं सभी के घर में जाकर माखन चोरी करने लगते हैं। सब गोपियाँ जो हैं बड़ी प्रसन्न होती है मन में, लेकिन फिर भी जब माखन चोरी करके चला जाता है तो उसके दर्शन के बिना रहा नहीं जाता है, इसलिए वो प्रभावती और बाकी सारी गोपियाँ जो है वो कंप्लेंट करने के लिए नंद भवन में आती है। नंद भवन में यशोदा को कंप्लेंट करती है, लेकिन देख उनको नहीं रही है, देख अंतपुर में रही है। समझो यहाँ पर यशोदा माता है तो यहाँ पर देखकर कंप्लेंट करना है ना आपको, तो यहाँ पर खड़े हैं लेकिन देख अंदर रहे हैं, और यशोदा के साथ बात कर रहे हैं अंदर देख रहे हैं, कहीं कन्हा का दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। क्या कंप्लेंट करते हैं, अरे यशोदा माई देखो तुम्हारा लाला कैसा है, जब भी हम जाते हैं दूध निकालने के लिए उसके पहले आकर बछड़े को लूज कर देते हैं, बछड़ा आकर पूरा दूध पी लेता है, जब हम मटका लेकर जाते हैं दूध निकालने के लिए तो खाली पात्र लेकर लौट के जाते हैं। बड़ा नटखट बालक है, इसको कंट्रोल में रखा करो। अगर ये देखकर अगर हम उसको चेतावनी देते हैं तो बड़ी प्रेम से मुस्कुराता है, तो हम लोग उस मुस्कुरा को देखकर कुछ नहीं कर सकते, ना दंड दे सकते ना मार सकते। और ये माखन और दही चुराने में बहुत एक्सपर्ट है, जब उसको पकड़ते हैं हम रंगे हाथ तो कहते हैं क्यों पकड़ती हो मुझे, मुझे तुम्हारे घर में माखन चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे मैया के घर में बहुत लाखों लाखों गाय पद्मगंधा गाय हैं, कमल के खुशबू वाला मक्खन खाता हूँ मैं, ये कौन खाएगा। फिर वो मक्खन जो है वो कहती है कि बंदरों को खिलाता है, बंदर का पेट भर जाता है तो बंदर भी नहीं खाता है, तब कहता है देखो देखो इतना घटिया मक्खन है बंदर भी नहीं खाते। ऐसे गोपियाँ कंप्लेंट कर रही हैं। फिर जब भी मक्खन नहीं मिलता है तो सारे घर के पात्र तोड़कर यहाँ वहाँ इतस तथा फेंक देता है, इधर उधर कर लेता है, ऊंचा लटकाने पर अपने अलंकारों के प्रकाश से ढूंढ लेता है, बहुत ऊंचा रहेगा तो डंडा मारकर उसको भी होल बनाता है और फिर टपका हुआ जो है ऐसा आ करके सब लोग मिलकर खाते हैं उसको, नहीं तो पत्थर मारकर तोड़ते हैं, डंडा मारकर तोड़ते हैं, नहीं तो फिर उखल पे चढ़कर या दूसरों को चढ़ाकर उसके कंधे पे चढ़कर पीठ पे चढ़कर फिर माखन के मटके को तुम्हारा निकाल लेते हैं। इसको अलंकार निकाल देना तुम, मैया कहते हैं हाँ निकाल दूंगी, अरे लेकिन मुझे लगता है कि निकालने से लाभ क्या है, इनके शरीरों में से इतना दिव्य प्रकाश निकलता है कि उस अंधेरे में लटके हुए ऊंचे ऊंचे मटकों को भी देख लेते हैं, इतना प्रकाश पैदा होता है। और जब मक्खन नहीं मिलता है तो हमारे पलने में सोए हुए बालकों को चिमटा निकालता है, उनके कान में पानी डालता है, हमारे घर में मूत्र पेशाब विसर्जन करता है और थूक भी देता है हमारे जमीन पर। कैसा बालक है तुम्हारा ये, उखल को लेकर मटका तोड़ता है, हाँ सब सामान बिखेर देता है। तो ठीक है, यशोदा कहती है चलो ठीक है, अरे कभी कभी तो एक बार उसको रंगे हाथ पकड़ के लाया करो ना। तो एक बार प्रभावती उसको रंगे हाथ पकड़ लेती, प्रभावती ये उपानंद बाबा की पत्नी है, तो उसको पकड़ती है, बोलते अच्छा आज मिले हो, हाँ हर समय भाग जाते हो, आज मैंने यशोदा दीदी से बहुत ताने सुने हैं कि प्रभावती तुम मेरे बालक का द्वेष करती हो, इसलिए तुम हमेशा आके कंप्लेंट करती हो, और बालक यहाँ बैठा है और ऐसे साधु की तरह शांत चित्त से सब कंप्लेंट सुन रहा है, उसके कोई अपराध नहीं करता है बालक मेरा, कभी कभी अगर तुम्हारी बात सच है तो उसको रंगे हाथ पकड़ के लाया करो, आज तुम्हें ले जाऊंगी। तो बालक कहता है देखो गोपी छोड़ दो मुझे, आप छोड़ दो, अच्छा नहीं होगा, नहीं तो पछताओगे तुम आगे जाकर, पछताओगे। बोले कैसे पछताओगी, बोला जरूर पछताओगे देखते रहना। तो इतने में आगे से नंद बाबा आते हैं, तो तुरंत ये घूंघट मार लेती है, जैसे ही घूंघट मार लेती है और हाथ पकड़ के लेफ्ट राइट करके घर लेके जा रही है नंद बाबा के सामने, मतलब यशोदा मैया के सामने प्रस्तुत करूंगी और सारा पुराना हिसाब वसूल करूंगी। जैसे घूंघट मार लेता है तुरंत कृष्ण भगवान अपने आप को ऋषभ के रूप में रूपांतरित करते हैं, ऋषभ जो है वो उसी का लड़का है, अपने आप को रूप बदल लेते हैं। बोले घूंघट मार कर आती है, यशोदा सुना तुमने, तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हारे मेरे बालक को रंगे हाथ पकड़े, आज लाइयो देखो। यशोदा माई देख रही है इसके हाथ में तो इसका बालक है, अरे अपना घूंघट तो हटाओ, इतना बड़ा घूंघट मार के रखा है, घूंघट हटाओ, देखो तुम्हारे हाथ में कौन है, अपने बालक को लेके आती हो और बोलती हो कि मेरा बालक है, देखो देखो। घूंघट निकल के थे, अरे ये कैसे हो गया, मैं तो तुम्हारे बालक को लेके आई थी। हाँ तुम लोग तो ऐसे ही बहाने करते रहते हो, अभी अगली ये बार तो अपने बालक को लेके आए हो, अगली बार अपने पति को लेके आओगे कहोगे कि मेरे तुम्हारे बालक ने मक्खन चुराए, देखो तुमको लेके आया हूँ, संभाल के रहना अगली बार पति को लेके मत आना। तो बड़ी वो सहमा जाती है, शीज़ वेरी एम्बेरेस्ड, वापस जाती है, कुछ देर बाद आगे चली जाती है तो फिर कृष्ण अपने रूप में आ जाते हैं। मैंने कहा था ना पछताओगी, नहीं सुना तुमने, मेरी बात सुना करो। हाँ अगली बार पकड़ती है तो वो पकड़ के बोलते अभी छोड़ूंगी नहीं, तो बोलते ये मेरा हाथ है ना इतना कमल की तरह मुलायम है, कितना कसके पकड़ के रखा है, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे साथ, मैं कहा नहीं कह रहा हूँ, मैं आने को तैयार हूँ, लेकिन ये जरा हाथ थोड़ा सा ढीला पकड़ लेना ना, बहुत दुख रहा है, ये तो चेंज कर लेना, ये दाहिना हाथ से बायां हाथ, बायां हाथ से दाहिना हाथ कर लेना। तो ये इतनी बात बोलते हुए तुरंत दूसरे का हाथ उसमें हाथ में देता है, समझ में आपको आया ना, ये बातों बातों में वो एकदम तेज जा रही है, पहले बोलता है कि मुझे जरा ढक दो घूंघट से क्योंकि मैं बहुत शर्मा रहा हूँ, सब लोग मुझे देख रहे हंस रहे हैं, तो पहले घूंघट डाल लेता है, वो किसी को इशारा करता है और जैसे ही वो हाथ बदली करते किसी दूसरे का हाथ देकर तुरंत घर भागता है, मैया मुझे भूख लग रही है तुरंत मक्खन खिलाओ, तो मैया फटफट फट उसको दूध मक्खन खिलाती है और सो जाता है। कुछ देर बाद में आती है, लेफ्ट राइट सब पलटन को लेके आती है, बोल रही देखो तुम्हारे कानों को पकड़ के लाया है। फिर वही बात, तुम प्रभावती पागल तो नहीं हो गई हो, और वो बाद में जब वार्तालाप हो रहा है उसको पता चल रहा है कि ये तो अलग ही लड़का है, यशोदा डांट रही है, तो पीछे से आते हैं, मैया क्या शोर मच रहा है, देखो अंदर सो रहे हैं और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे घर में माखन चोरी कर रहा है। ऐसे कई कई कहानियां हैं उनकी। कितना समय अपने पास है, समय हो गया ना शायद, 12 बजे भगवान का जन्म हो रहा है, हाँ 3 मिनट में आरती करनी है, हरे कृष्णा। तो इस तरह से एक बार वो बछड़ा चुरा उनका गुम होता है, तो ये गोपी के घर में जाकर पूरा मक्खन में हाथ डालकर दोनों हाथ से मक्खन खा रहे हैं, जब पकड़ जाते कहते हैं अरे मेरा बछड़ा गुम हो गया था, कहीं तुम्हारे मटके में तो नहीं गया, इसलिए मैं मटके में खो रहा हूँ। एक बार कहता है कि अरे दोनों हाथ माखन में, मुंह में माखन, सब जगह माखन फैला हुआ है, कहते हैं कि अरे माँ गोपी मैं नहीं खाया माखन तुम्हारा, तुम्हारे माखन में इतनी चींटियां लगी हुई थी, वो चींटियों से माखन को बचाने के लिए मैं गया और चींटियां निकालने लगा, सब बहुत चिट्ठी निकाल दिया, कुछ माखन के अंदर भी थी, कुछ मटके में घूम रही थी, तो निकालते निकालते कुछ चिट्ठियाँ मेरे हाथ पे आ गई, ऐसे हाथ पे आके आके ऐसे कंधे से आ गई, कंधे से गले से, गले से वो मेरे गाल पे आ गई और मेरे ओठ पे आ गई, मेरे गुदगुदी होने लगी। फिर मैंने हाथ निकाल से वो यहाँ की चिट्ठी को निकाला और जब चिट्ठी को निकाला तो थोड़ा मक्खन लग गया तो मेरे जीवा से उसको चाट लिया। मैंने मक्खन नहीं खाया, मैं तुम्हारे एक मक्खन की रक्षा कर रहा हूँ, तुम्हारा इतना कीमती मक्खन जो है वो चींटियों के आतंक से बचे, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। श्री नवनीत चोर भगवान कृष्ण की जय हो। श्री कृष्ण भगवान की, नंद के उत्सव की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है।